ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्धा आससादाय दृच्छया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्धा आससादाय दृच्छया। महाभागवत भगवान का महान भक्त द्वापायन कृष्ण द्वापायन व्यास का सुहृतः हितेशी सखा मित्र लोकान तीनों लोकों में अनुचरान विचरण करते हुए सिद्धे उस आश्रम में आससाद पहुंचा। यदृच्छया अपनी पूर्ण इच्छा से। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद ध्यान से सुनिए। अनुवाद उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वापायन व्यास के मित्र एवं हितेशी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तात्पर्य मैत्रेय व्यास देव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितेशी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति की अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण नहीं होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते तो ये भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाचाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tasmin Mahabhagavato Dvapayan Sarut Sakalokanam Charan Siddha Asasanda Indrachaya. उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वापरायण व्यास के मित्र नितेश मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो हमारा फिर से परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवतम की जो चर्चा है वो करने का मौका मिला है और दूसरा उसको श्रवण करने का भी। तो शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बेस्ट श्रोता है शुकदेव गोस्वामी के लिए। तो शुकदेव गोस्वामी जो शुक है तोता है, किसके तोता है? श्रीमती राधा रानी के तोता है। तो जब द्वापर के अंत में राधा कृष्ण इस भौम जगत से चले गए, भौम वृंदावन अपने धाम को छोड़कर चले गए अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन। तो जो भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत में होता है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। वही धाम को भगवान जब इस पृथ्वी तल पर लेके आते हैं तो उसको भौम वृंदावन कहते हैं। तो भगवान जब इस जगत से चले गए तो राधा कृष्ण वो राधा रानी के लेफ्ट हैंड में हमेशा बैठता है वो तोता, और राधा रानी उसको फ्रूट्स खिलाती रहती है और वो राधा रानी को आनंद प्रदान करता है। क्या आनंद प्रदान करता है? कृष्ण कथा सुनाकर। क्या सुनाकर? कृष्ण कथा। तो कृष्ण आनंदित होते हैं जब राधा रानी या उनके भक्तों की चर्चा होती है उसको सुन के कृष्ण को आनंद होता है। जैसे माता पिता आनंदित होते हैं ना अपने बच्चों के बारे में सुन के, बच्चे ने स्कूल में क्या किया, नंबर वन आ गया, ये मेडल लाया, वो चीज की, इतना बड़ा नाम मेरा कर दिया। बच्चों ने थोड़ा कुछ किया हुआ तो माता पिता को इतना आनंद होता है उनके बारे में सुनने में, माता पिता को सबसे अधिक आनंद होता है। तो भगवान अहम बीज प्रताप पिता, भगवान सबके पिता है, तो भगवान को भी अत्यधिक आनंद होता है जब वो अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण भागते हैं, भक्तों के बारे में सुनने के लिए कृष्ण दौड़ते हैं। और श्रीमती राधा रानी भी आनंदित होती हैं जो भक्त के स्वरूप हैं। तो वो कैसे आनंदित होती हैं? जब कृष्ण के बारे में सुना जाता है तो ये सब चीजें बंद कर सकते हैं। तो कृष्ण के बारे में जब सुना जाता है और ये शुक जो तोता था उनका काम ही था, सेवाएं थी कृष्ण के बारे में सुनाना। तो इसी कारण से जब भगवान अप्रकट होने वाले थे तो उन्होंने क्या किया, उनको इस तोते को यहां ही रख दिया। उन्होंने इस जगत में क्या किया, उनको रख दिया और उसको सेवा दी। कौन सी सेवा दी? शुक को। उसको ये सेवा दी कि आप नित्य रूप से हमारे जो रूप गुण लीला आदि है उनका वर्णन करो। ये शुकदेव गोस्वामी नित्य रूप से वर्णन करते हैं और भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है जब परीक्षित महाराज ने कहा मैंने तो अभी बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में सुना है, उनके वंश आदि के बारे में सुना है, मैं अभी डायरेक्ट कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज की इस बात को जब सुना तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषास्त्री पुनाति। वासुदेव जो कृष्ण है उनकी कथा या वासुदेव के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीन चीजों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। और वो तीन चीजें क्या है? वक्तारम पृच्छतम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। सबसे अधिक पवित्र करती है कृष्ण कथा वक्ता को, जो बोलता है कृष्ण के बारे में। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वक्तारम। और दूसरा आदि पवित्र करती है पृच्छतम, मतलब एक होता है कि हम क्लास अटेंड करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए पहुंच जाते हैं कि मैं भी भागवतम क्लास में था, है कि नहीं। उपस्थिति क्या करना, अटेंडेंस लगाना, लेकिन जिज्ञासा के साथ कि क्या होगा, आ नेक्स्ट क्या होगा। जैसे मूवीज में लोग देखते हैं ना, अरे आगे क्या होगा, ट्रेलर देखते हैं और उसके जैसे आगे क्या होगा, तो वैसे ही सुनने में कृष्ण कथा पर जब हम सुनते भागवतम को, तो हमें हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, उत्साह के साथ, लालसा के साथ, जिज्ञासा के साथ सुनना चाहिए। अरे क्या नेक्स्ट क्या होगा, अगले श्लोक में क्या होगा, उसको जानने के लिए एक जो वक्ता है क्लास खत्म के होने के बाद सोचता है कल का समय, कल के 8 कब बजेंगे, कल मैं नेक्स्ट चीजें कब सुनूंगा। तो ऐसी भावना से जो सुनता है वो वास्तव में शुद्ध होता है, उसको कहते हैं जो श्रोता है। और तीसरा मतलब पृच्छक में जो प्रश्न करता है, और तीसरा क्या है श्रोत्रम, वो केवल आया है चलो सुन लेते हैं, कुछ काम धाम नहीं है, थोड़ा सा समय चलो सुनते हैं, तो उसको भी पवित्र करेगी कृष्ण कथा, लेकिन इतनी अधिक नहीं करेगी जितनी इन दोनों को पवित्र करेगी। तत्पाद सलिलम यथा शुकदेव गोस्वामी फिर इस कृष्ण कथा का वर्णन या तुलना भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है वो क्या है, गंगा है, है ना। चाहे हम चरणामृत पीने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन चरणामृत बह रहा है, चरणामृत की नदी है, और वो नदी कौन सी है, गंगा है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि गंगा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। सबसे पहले वो पवित्र करती है स्वर्ग को, स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, और जब वो यहां आती है इस जगत में तो उसको कहते हैं भगीरथी या गंगा या जाह्नवी, और फिर वो पाताल लोक में जाती है तो गंगा को कहा जाता है भोगवती, जो वहां के लोगों को भी पवित्र करती है। इसी कारण से एक सुनने के लिए एक भक्त के अंदर हमेशा लालसा होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़ी देन है, हमें चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम दिया है। आप भागवतम को इतना हल्का मत लीजिए, भागवतम क्या है, सबसे प्रधान ग्रंथ है। भागवतम से जिसने प्रेम किया, भागवतम के अलावा किसी बुक को छूने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र कहते हैं। इवन भागवतम में कहा गया है, भागवतम के प्रति किसी का आकर्षण जागृत हो जाए तो उसको नीड नहीं है हजारों हजारों किताबें रखने की, दूसरे किसी ग्रंथ को टच करने की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्ति भागवतम को पढ़ता है, भागवतम को सुनता है कलयुगा में, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी और किताब की आवश्यकता नहीं है। यही तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, दुई भाई हृदय छाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। चैतन्य महाप्रभु की देन क्या है, चैतन्य महाप्रभु दो भाई थे, कौन है वो दो भाई, गौरांग महाप्रभु और दूसरे नित्यानंद प्रभु। तो इनकी तुलना सूर्य और चंद्रमा से की गई है चैतन्य चरितमृत में। कहते हैं कि कलयुग में अंधकार छाया हुआ है, लेकिन जैसे सूर्य उदित होता है या चंद्रमा उदित होता है तो क्या होता है, लोगों को सारी जो वस्तुएं हैं अपने घर के बर्तन आदि गाड़ी ये सब चीजें क्या होता है, सुव्यवस्थित रूप से दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये एक ही दिशा से उदित हुए हैं, ये विशेषता है। सूर्य यहां से उदित होता है तो चंद्रमा यहां से होता है, लेकिन गौरनेता की तुलना क्या की गई है, एक ही दिशा से गौरनेता है, पूर्व क्षितिज गौड़ देश बंगाल से उदित हुए हैं। और इनके आने से क्या होगा, हुआ कि भौतिक बद्ध जीवों के हृदय का अंधकार खत्म हो गया, और जैसे अंधकार खत्म हो गया ये गौरनेता ने बद्ध जीवों का साक्षात्कार या मिलन दो चीजों से करवाया। वो दो चीजें क्या है, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत बड़ा महाप्रभु ने एक भागवत ग्रंथ को दिला दिया और दूसरा एक है, दो भागवत है। भागवत का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् का मतलब क्या होता है? सुंदर, है ना। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है ना आपने। श्रीमद् मीन्स सुंदर, भगवत मीन्स भगवान ने, गीता मीन्स गीत। सुंदर गीत भगवान ने गाया उसको गीता, भगवत गीता कहते हैं। तो भागवत क्या है? सुंदर है श्रीमद् भागवत। भागवत मतलब भगवान और भक्त के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है उसको भागवत कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने दो भागवत हमें दिए, दो भागवत जिसमें भक्ति भरी पड़ी है। क्या है? उन दोनों को भी कोई व्यक्ति स्पर्श करता है तो उनमें से केवल भक्ति बाहर निकलेगी, भक्ति की बाढ़ निकलेगी। जैसे कोई होता है ना, हाँ, कोई चीज सोचो, आप मार्केट से जूस लेके आते हो किसी पॉलिथिन में टाइट करके और थोड़ा सा टच करते हो सुई या छोटा सा, तो जूस बाहर निकलने लगता है। तो वैसे ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों में केवल भक्ति रस भरा पड़ा है। कोई व्यक्ति सिंसियरली इन दोनों के संपर्क में आता है तो उसके हृदय में भी भक्ति भर जाएगी। क्या भर जाएगी? भक्ति। और दो चीजें क्या है? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र। एक भागवत क्या है? भागवत शास्त्र ग्रंथ, ग्रंथ भागवत। ग्रंथ क्यों कहते हैं इन शास्त्रों को? क्योंकि हमारे अंदर हमारी ग्रंथि होती है ना, ग्रंथि मीन्स गांठ। हमारी गांठ माया के साथ बंधी हुई है। जैसे शादी होती है ना, शादी के समय क्या लगाते हैं? गांठ मारते हैं। कितने जन्म का ये बंधन है? एक जन्म व्यक्ति को सहा नहीं जाता, लेकिन कितना इच्छा करता है? सात जन्म मरना है उसको, एक जन्म उसको नींद नहीं आती, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, लेकिन प्रार्थना करता रहता है, सात जन्मों के फेरे लगा रहे हैं, सात जन्म बने रहेंगे, हमें और जन्म नहीं लेने हैं। भगवान को एक एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान एक ही जन्म बस, बहुत हो गया। तो ग्रंथ इसलिए ग्रंथों को कहते हैं क्योंकि ये भौतिक आसक्ति की गांठ, गांठ को ग्रंथि कहते हैं। तो जो ग्रंथि को छोड़ देता है, छुड़ाता है, ओपन करता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। तो भागवत जो ग्रंथ है, शास्त्र है, इसके संपर्क में आने से भौतिक बंधन खुलने लगता है और भगवान के साथ आपकी गांठ बंधने लगती है। हमें अपनी गांठ किसके साथ बांधनी है? किसके साथ? कृष्ण के साथ, है ना। कृष्ण हमारे असली पति है, इसलिए भगवान के एक नाम सर्वपति है। तो भागवतम वो ग्रंथ है जो हमारे गांठ को छोड़ देता है। तो महाप्रभु ने भागवत शास्त्र दिया और महाप्रभु ने दूसरा क्या दिया? भक्ति रस पात्र। भक्ति रस पात्र क्या है? भगवान के भक्त है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तार हृदय तार प्रेमे हयवश। तो जो भक्ति में बहुत गंभीर होना चाहता है, सही में जिसके हृदय में लगता है कि मुझे ना भक्ति प्राप्त करनी है। कौन सी भक्ति? भक्ति भी कई प्रकार की है, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, मिश्र भक्ति और एक है शुद्ध भक्ति। तो हमारे जो भजन चल रहा है वहां रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी भजन में लगे हुए हैं या फिर मिश्र भक्ति में। मिश्र भक्ति क्या है? आपको नदी पार करना है तो एक नाव में खड़े नहीं हो गया, कितने नाव है? दो, एक पाव उधर एक पाव इधर, भगवान आप भी हो और उधर दुर्गा जी भी है, फिर गणेश जी भी है, शिव जी भी है, फिर और कुछ है। तो क्या है ये सारे सारे नाव में पाव रखना। शुद्ध भक्ति मीन्स केवल 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 वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। शुद्ध भक्ति के उदाहरण कौन है? वृंदावन के भक्त श्रील प्रभुपाद हमारे सामने जीते जागते उदाहरण, श्रील प्रभुपाद है। तो दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, जो सोचता है ना, अरे बहुत दिन हो गए भक्ति कर रहा हूं, 2 साल, 1 साल, 5 साल, 6 महीने, कुछ रस ही नहीं आ रहा है, निरस हो रहा है, अंदर सूखा सूखा लग रहा है। जब करता हूं तो माला फेंकने की इच्छा होती है, पहले तो माला सुबह उठाने की इच्छा नहीं होती, लगता है कि निरस हो रहा है। तो जिसको सही में भक्ति के रस में डूबना है, या जिसने अपने जीवन का लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना बनाया है और वो शुद्ध भक्ति, उसको इन 2 चीजों में डूब जाना चाहिए। एक है भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए, उन्नत भक्तों का संग, और दूसरा है भागवतम का अध्ययन, भागवतम को सुनना, भागवतम को बोलना और भागवतम का श्रवण करना। ये 2 मोस्ट पावरफुल चीजें हैं। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ये विधि स्वयं आचरण से सिखाते हैं। महाप्रभु केवल बोलते नहीं है बल्कि वो करके दिखाते हैं। इसलिए आचार्य किसे कहते हैं? आचरते इति आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। कृष्ण केवल बोलते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो बोलते भी है और आचरण करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महान आचार्य कहा गया है। इसी कारण से श्रीमद् भागवत की स्तुति में हम सुनते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। कभी कभी भागवत सेवया नहीं, भागवत का सप्ताह नहीं, क्या कहा गया? हम शुरुआत में उच्चारण करते हैं नित्यं भागवत सेवा, इतनी बार उच्चारण किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अरे नित्य करो, नित्य करो, नित्य करो, नहीं हम नृत्य करेंगे, नित्य नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नृत्य करेंगे, माया के इशारों पर नाचेंगे। तो नित्यम भागवत सेवा का मतलब है भागवत भक्त की सेवा करना और श्रीमद् भागवतम को सुनना, ये क्या है? नित्यम भागवत सेवया। सेवाया 2 प्रकार से है, एक भक्तों को सर्व करो, महान भक्त के आदेशों की सेवा करो, और दूसरा जो ग्रंथ भागवत है उसकी सेवा करो, उसका वितरण करके, उसकी सेवा करो उसको सुन के, उसकी सेवा करो उसका अध्ययन करके। तो फिर हम देख सकते हैं कि भक्ति में आनंद अनुभव हो रहा है। गीता में कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इहम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कहते सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यह अव्यय विज्ञान, ये करने से सुख की अनुभूति होती है। हम इसको करते तो मुंह पर 12 बजे में नजर आते हैं, है कि नहीं? चेहरे ऐसे फीके उदास पड़े होते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे हमारे चेहरे पे क्या आना चाहिए? भक्ति का तेज। हमें फिर वो कॉस्मेटिक क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है तेज लाने के लिए, है ना? और उत्साहित नजर आने चाहिए, आनंद में मग्न रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते भक्ति में, क्योंकि हम गंभीर नहीं होते हैं तो फिर हम मुरझाए फूल की तरह रहते हैं। तो ऐसे मुरझा हुआ फूल नहीं, उसके लिए पानी डालना होगा। पानी क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। ये 2 चीजें पावरफुल हैं भक्ति में प्रफुल्लित रहने के लिए। क्या? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, ये 2 चीजें मोस्ट पावरफुल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेमधर। इस मुख्य पथ को कोई व्यक्ति पकड़ता है चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे साथ। हम क्या है, हम दूसरों को देख के थोड़ा सा ही रहते, चलो वो लोग भी तो ढीले ढाले हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन हमें थोड़े सुख के लिए है, अपने हाथ से महान वस्तु को गवा रहे हैं, और वो महान वस्तु क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति जो प्रेम धन है उसको गवा रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने महापुर के महा जो पार्षद हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो पहला अध्याय है उसमें उसका नाम है गुरु महिमा। वो पहले अध्याय में एक गीत है और वो गीत कौन सा है, ये गीत है। कौन सा गीत है? गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्म। तो उस पहले अध्याय में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं शुद्ध भक्ति के तत्व का। आज के श्लोक में प्रभुपद तात्पर्य में कहते हैं इवन मैत्रेय मुनि भी शुद्ध भक्त नहीं थे, वो बड़े ज्ञानी थे, महर्षि थे, लेकिन फिर भी वो भगवान से उनकी मुलाकात हो पाई कब, जब भगवान इस संसार को छोड़ने वाले थे। कृष्ण आखिरी में छोड़ने से पूर्व किसी से मिले थे तो इन दो भक्तों से मिले थे। कौन थे वो दो भक्त? उद्धव और दूसरे थे मैत्रेय मुनि। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो मैत्रेय मुनि है ये कृष्ण द्वापायन व्यास के हितैषी थे और सखा थे। बल्कि कृष्ण द्वापायन व्यास देव के पिता कौन है? पराशर मुनि। पराशर मुनि के ये शिष्य है। इतने विद्वान बड़े चढ़े होने के बाद भी उनके पास भक्ति रूपी धन नहीं था। तो भक्ति कुछ अलग चीज है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं जो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, जिनके पास बहुत श्लोकों का ज्ञान है, हाँ, जिनके पास पद है, उनको हम रिस्पेक्ट करते कि नहीं, उनको हम प्रणाम करते, हमें लगता है कि इनके पास क्या है, बहुत भक्ति है। लेकिन नहीं, भक्ति को आप इन सब योग्यताओं से नाप नहीं सकते। भक्ति तो हृदय का विषय है। कहां का विषय है? हाँ, भक्ति हृदय का विषय है। भक्ति एक बहुत बड़े वक्ता से भी अधिक भक्ति उस भक्त में हो सकती है जो दिन रात मंदिर में झाड़ू लगाता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक सेविका थी, सारे भक्त मृदंग करताल बजाते थे, नाचते थे, गाते रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के आसपास घूमते रहते थे, लेकिन एक स्त्री थी जो केवल एक छोटी सी सेवा कर रही थी। क्या सेवा कर रही थी? रोज गंगा से मटके भर भर के पानी लाने की सेवा कर रही थी भगवान के लिए और भक्तों के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन के समय बैठ गए, उन्होंने देखा ये स्त्री को मैं रोज देखता हूं, ये रोज पानी लाती है, और ऐसे नहीं कि मटकों को ऐसे कि वैसा नहीं। चलो, हम होते हैं ना सेवा से परेशान हो जाते हैं। सेवा से क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। हमें सेवा टेंशन लगती है, हाँ, परेशान रहते हैं, हम फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, अरे वो प्रभु जी फोन ना कर ले मुझे, नहीं वो मुझे बुलाए ना। तो ये सब क्या है? हम कृष्ण से भाग रहे हैं, वो प्रभु जी से नहीं भाग रहे हैं। हम किससे भाग रहे हैं? कृष्ण से भाग रहे हैं। और कृष्ण से भागना मीन्स माया रूपी पिशाचिनी का आलिंगन करना। हाँ, जैसे वो जू में उस शेर ने खाया था ना उस व्यक्ति को, वैसे ही है। भक्तों से भागना, कृष्ण से भागना मीन्स शेर के मुंह में जाके गिर जाना। तो हम भागते हैं सेवा से, मीन्स कृष्ण से भाग रहे हैं, भक्तों से भाग रहे हैं। और सेवा करने के लिए भी कहा जाता है, हम करते भी हैं तो उसमें हमारा मन और हृदय नहीं होता। हाँ, कहा जाए प्रभु जी आप मृदंग रखिए, अभी बोला है तो मृदंग को ले रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे? पटक के रखेंगे। करतलवा रखने के लिए बोला जाए पूरा ऐसे फेंक देंगे, इसको भी उठा के वहां ले जाना है, इच्छा तो होती नहीं कि इसको उठा के ले जाओ गीता भवन में, लेकिन ले जाएंगे तो वहां गिरा लेंगे उसको। तो ऐसी सेवा से कुछ लाभ नहीं है। मतलब वो जो स्त्री थी वो रोज कई महीनों से सालों से जल लाते थे, लाके घड़ों को कैसे रखते थे एक लाइन में, यहां से देखो तो भी सीधे, वहां से देखो तो भी सीधे, ऐसा सुंदर सेवा कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे इस स्त्री को मैं रोज मंदिर में उनके घर में देखता हूँ, सेवा करती है, इसका नाम क्या है? नाम जाने की इच्छा होती है ना। हाँ, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा इसका नाम दुखी है। क्या नाम है? दुखी है। चैतन्य महाप्रभु दुखी हो गए उसका नाम सुन के। अरे इतना जो सेवा कर रहे हैं कृष्ण का भक्तों का, वो दुखी कैसे हो सकती है? हाँ, ये क्या से क्या कहलाएगी? सुखी। हाँ, तो भक्ति कोई भौतिक स्केल पर नहीं है। बड़े बड़े बाहर के वक्ता भी अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, वहां प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया, प्रभुपाद जब वृंदावन गए तो एक मंदिर के सामने प्रभुपाद गुजरे, राधा दामोदर मंदिर, तो वहां प्रभुपाद ने देखा एक ओल्ड माता जी, बहुत ओल्ड हो गई है, वो राधा दामोदर डिटीज के लिए रोज अभिषेक के लिए है ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे यमुना में जाते थे, एक बड़ा सा मटका जल भर के घड़ा अपने सर में लाके दामोदर मंदिर में देती थी सुबह सुबह। प्रभुपाद ने कहा यह है प्योर डिवोशन, ये जो स्त्री है ये भगवान के धाम जाएगी। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद कहते अभी नहीं, मैं जब यहां रह रहा था उससे पहले से मैं देख रहा हूं कि ये स्त्री रोज विदाउट फेल क्या कर रही है, दामोदर की इस प्रकार से सेवा कर रही है उनके लिए, चल ठंड हो गर्मी हो बारिश हो। तो यह है नैष्ठिक, जब भक्ति में उन्नत हो जाता है तो निष्ठा आ जाती है और वो स्थिर हो जाता है भक्ति में, फिर कोई वस्तु व्यक्ति या जो वातावरण है उसकी साधना में बाधा नहीं ला सकता। तो प्रभुपाद के शिष्य तो आश्चर्य चकित हो गए, उन्होंने कहा बूढ़ी सी माता जी जो पानी लाती ये भगवत धाम जाएगी और हमारा क्या होगा, हम इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। तो भक्ति को बाहरी रूप से नापा नहीं जा सकता, इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। शुद्ध भक्ति क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भागवत शास्त्र मर्म नवविदा भक्ति धर्मा सदा करे बसु सेवान अन्य देवाश्रयनाई तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम कारण। वो कहते हैं भागवत शास्त्र मर्म नवविदा भक्ति धर्म, यदि शास्त्रों का मर्म जानना है, मर्म का मतलब है सार, सारे शास्त्रों का सार जानना है तो वो भागवतम में है, और भागवतम में भी सार क्या है, नवविदा भक्ति, नव प्रकार से भगवत भक्ति की जाती है, और इसको कैसे करना चाहिए, सदाई करीब सुसेवन, उन्होंने ये शब्द नहीं यूज किया कि सेवन करो बोला, सुसेवन मतलब अच्छी तरह से करो, बहुत अच्छी तरह से करो, अन्य देवाश्रय नाही तुम्हारे कही लो भाई यही भक्ति परम कारण। हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, शुद्ध भक्ति कुछ है अन्य देवाश्रय नहीं, गलती से दूसरे देवताओं की सेवा पूजा भजन आदि नहीं करो, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण को ही अपना आराधक बनाओ। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करियाय क्या सतत भासी व प्रेम माझे। उन्होंने कहा नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्ति के क्या है इसके ऊपर ये दो श्लोक लिखते, वो कहते हैं साधु शास्त्र और गुरु, ये तीनों के जो वाक्य हैं उनको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो उनके वाक्यों को हृदय में धारण करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम भरने लगता है। कर्मी ज्ञानी भक्ति ही ना यहाँ के करेमी भिन्ना नरोत्तम यही तत्व गाजे, नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े भक्त हैं, उनको आवश्यकता नहीं है ये सब नवदा भक्ति अच्छी तरह से करने की, लेकिन वो क्योंकि जितना उन्नत भक्त होता है उसके अंदर एक विचार हमेशा रहता है मैं क्या हूं सबसे छोटा। उत्तम हैया आपना के माने आधा, उत्तम होकर भी वो भक्त स्वाभाविक उसके हृदय में ये भावना आ जाती है कृष्ण के द्वारा, उन्नति का यही लक्षण है, ये भावना आती है कि वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े भक्त हैं, उनको एक उपाधि से विभूषित किया था, क्या उपाधि थी, ठाकुर महाशय। क्या था, नरोत्तम दास ठाकुर का नाम सुना है, जिन्होंने ये गीत लिखा है, रोज हम इसको गाते हैं, तो ऐसे महान आचार्य। तो नरोत्तम दास ठाकुर को एक उपाधि मिली, जिस उपाधि को सारे वृंदावन में गोस्वामी उनको कहते थे ठाकुर महाशय। तो महाशय का मतलब क्या है, राधा रज चरणाश्रय करे से ही महाशय, राधा रानी का जिसने आश्रय ले लिया है वो व्यक्ति महाशय है। वो सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन में जब नरोत्तम दास ठाकुर थे उस समय लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी इतने सारे भक्त थे, तो भी नरोत्तम दास ठाकुर को कहा जाता था प्रेम भक्ति महाराज। कौन से महाराज? प्रेम भक्ति, मतलब इनके जैसा प्रेमी कृष्ण के लिए संसार में कोई नहीं है, ऐसे महान भक्त। तो नरोत्तम दास ठाकुर को ये उपाधि देते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत विनम्र थे, क्योंकि भक्ति कहां निवास करती है? जिसके हृदय में विनम्रता है, भक्ति वहां बहने लगती है। गुरु के हृदय में भगवत भक्ति है तो गुरु के हृदय से एक शिष्य के हृदय में कब भगवत भक्ति जाती है? जब शिष्य का हृदय बहुत विनम्रता की भावना से भरित है। जैसे आप कुछ, जैसे करताल है, करताल को ऐसे रखो तो उससे सारा पानी डालोगे तो बाहर बहेगा, लेकिन आप ऐसे रखो तो क्या होगा? उसमें भर जाएगा। तो वैसे ही विनम्रता हो तो हमारे हृदय भक्ति से भर सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छा आचरण करते थे और उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु लोकनाथ गोस्वामी से कई शिक्षा ली और फिर वो और एक शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु कितने हो सकते हैं? एक, लेकिन शिक्षा गुरु असंख्य हो सकते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं भक्ति के बारे में। तो नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी से पास जाते हैं और उनसे दो ग्रंथ सीखते हैं, एक है जगन्नाथ वल्लभ नाटक और दूसरा था षट संदर्भ, छह संदर्भ उन्होंने लिखे थे, उनको सीखते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को देखा जीव गोस्वामी ने एक दिन कि उनकी उंगलियां जली हुई है, सारी उंगलियां क्या हो गई है? जली हुई है। तो नरोत्तम दास ठाकुर को पूछते हैं जीव गोस्वामी कि तुम कौन सी ऐसी सेवा कर रहे थे जिसके कारण तुम्हारी उंगलियां इतनी जल गई या जला दी तुमने उंगलियों को? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, एक घटना का वर्णन करते कि उनके साथ क्या घटित हुआ, किस चीज के कारण उनकी उंगलियां जल गई। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन जब अपना भगवत भजन कर रहा था तो हमेशा ये सोचता था कि मुझसे शायद कई अपराध आदि हो रहे हैं जिसके कारण मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर सो जाते हैं, उनके स्वप्न में एक स्वप्न आता है जिसमें उनके स्वप्न में श्रीमती राधा रानी आती है। अभी हमारे स्वप्न में कौन आता है? माया देवी आती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के स्वप्न में राधा रानी आती है और राधा रानी कहते हैं कि हे नरोत्तम, तुम अपने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करो और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा करो। भगवत कृपा प्राप्त करने का यही उपाय है, गुरु की सेवा श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ करनी चाहिए। ये करो और रोज अपने गुरु की सेवा करने का प्रयास करो, एक भी दिन ऐसा मत गवाओ कि आपके पास सेवा ना हो गुरु की करने के लिए। तो राधा रानी की आज्ञा उन्होंने अपने सर में धारण की और राधा रानी ने कहा कि नरोत्तम दास, तुम एक चीज में बहुत एक्सपर्ट हो और वो क्या? मानसिक सेवा करने में। कई प्रकार से सेवा होती है, एक शारीरिक सेवा कर सकते हो, दूसरा कैसे? मानसिक सेवा। तो मानसिक सेवा क्या है कि जब भक्त भक्ति में बहुत उन्नत हो जाता है, उसको भौतिक काम आदि तंग नहीं करते हैं, उससे ऊपर उठता है और उसका मन कृष्ण में इतना लग जाता है कि कोई उसके मन को कृष्ण से खींचना भी चाहे तो भी उसका मन कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। जैसे हरिदास ठाकुर, माया देवी उनको आकर्षित करने के लिए आ गई तो भी हरिदास ठाकुर का मन इतना कृष्ण में लगा हुआ था कि उससे अलग नहीं हो रहा था। तो मानसिक सेवा मतलब मन में जो भक्त है वो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। जैसे कोई कहता है ना कि महान भक्त 24 घंटे कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम कहते हो तो सोते भी तो है, सोना भी कृष्ण की सेवा है। वो निरंतर उनका मन कृष्ण के अस्तकालीन जो लीलाएं हैं उनमें मग्न रहता है। राधा रानी ने उनको कहा कि तुम क्या करो, मेरी सेवा अपने मन से आदि करो और उस आपकी सेवा से मैं संतुष्ट हो गई हूँ। और कहा कि मैं एक सेवा दे रही हूँ कि आज राधा रानी स्वप्न में उनको कहती हैं कि आज दोपहर को कृष्ण और मैं हम मिलने वाले हैं एक कुंज में अनेक सखियों के संग में, और हमने डिसाइड किया है कि कृष्ण के लिए हम स्वीट राइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वीट राइस। कृष्ण को स्वीट राइस बहुत पसंद है। तो ये जब राधा रानी ने कहा और इस सेवा के जो इंचार्ज है वो चंपक लता सखी है। कौन सी सखी? चंपक लता सखी। तो आध्यात्मिक जगत में हर एक भक्ति एक विशेष सेवा होती है। कोई भी ऐसी गोपी खाली नहीं है हाँ कि वो बस घूमती जा रही है, नहीं। हर एक के पास विशेष सेवा है और वो सेवा उसकी प्राण है। सेवा को एक भक्त को दुखी करना है तो क्या करो, उसकी सेवा को छीन लो, फिर वो बेचारा दुखी रहता है। वो अपना प्राण, गोपिया कृष्ण की सेवा के बिना अपना प्राण नहीं रखना चाहती। तो जब ये उनको कहा कि वहां चंपक लता सखी है जिनकी सेवा है दूध को बॉइल करना, और आप कौन हो? वो सखी हो। कौन सी सखी हो? चंपक लता सखी। तो इस प्रकार से चंपक लता सखी या मंजरी हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, ये सेवा करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर उठे और सोचे ये क्या स्वप्न मैंने देखा। वो 6 घंटे उठ के अपने मन को मग्न करके राधा रानी की आज्ञा को सोच रहे थे, तो वो अपने गुरु के पास जाते और कहते कि मुझे ऐसा स्वप्न आया था, मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा तुम तो महाभाग्यशाली हो कि राधा रानी आपसे सेवा चाहती हैं। तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं अपने मन में ही फिर क्या करने लगे, राधा रानी की सेवा में नियुक्त हो गए। और क्या सेवा उन्होंने की, बॉइल करने लगे दूध जहां वृंदावन में कुंजों में। तो जो दूध बॉइल कर रहे थे जिस चूल्हे पर रखा था उसमें ड्राई लकड़ियां उन्होंने डाली थी, सूखी लकड़ियां, जिससे आग बहुत तेज हो गई। इतनी तेज हो गई आग कि दूध बाहर बहने लगा, जैसे बहने वाला था। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया, अपने मन से ही उस दूध को उठाया और साइड में रखा, और जब अपनी आंखें खोली तो देखा उनकी उंगलियां क्या हो गई है, जल गई है। तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आया है कोई निष्ठा के धरातल से भी उन्नत है, तो वो व्यक्ति जैसे ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, वो बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसके पास सोचा कृष्ण की मैं क्या सेवा करो, मेरे पास धन नहीं है तो कैसे सेवा करो। तो उसने मन में ही भगवान के सुंदर विग्रह लाए, उनके लिए बहुत सारे वस्त्र लाए, अलंकार लाए, और अपने मन के द्वारा ही उनको सुंदर से सजाया, उनको मालाएं पहनाए, उनके लिए प्रार्थनाएं गाई, और फिर सोचा उनको कुछ भोग लगाता हूं। तो ब्राह्मण सोचते भोग क्या लगाओ, तो स्वीट राइस। स्वीट राइस जब उसने बनाया, अब मार्केट से उसने अच्छा दूध लेके आया, गैस के ऊपर रखा होगा, अच्छे से गाढ़ा किया, शुगर वगैरह डाली, और जब भोग लगाने का समय आ गया तो उसने सोचा स्वीट राइस बहुत गर्म हो तो वो अच्छा नहीं है खाने के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। तो उसने सोचा ठंडा है कि नहीं, तो अपनी उंगली डाली, उंगली डाली तो उंगली जल गई, और उसने आके खोली तो क्या हो गया, उसकी उंगली जली हुई थी। इसको कहते मानसिक सेवा, कि कृष्ण की सेवा में निमग्न हो जाना। तो ये बहुत ऊंचा धरातल है, इसलिए हम लोग कहते ना, कई बार कहते ना मन में जप करूंगा, वो योग्यता हमारे पास नहीं है। जप 3 प्रकार के हैं, एक है मन में, दूसरा है उपांशु, तीसरा है वाचिक। एक मन में जप करना जो उन्नत भक्त ये आचार्य के जैसे वो कर सकते हैं। उपांशु जपा मीन्स हम जिस छोटे आवाज में करते हैं उसको उपांशु जपा कहते हैं। और तीसरा जप क्या है, वाचिक। वाचिक मीन्स जो हम जोर जोर से जोर लगा के गाते हैं ना माइक पर मृदंग करता के साथ, वो वाचिक कीर्तन। तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे मानसिक सेवा से बाहर आगे देखा कि पूरे दोनों हाथ जले हुए हैं, तो उन्होंने सोचा क्या हो गया, मुझसे अपराध तो नहीं हुआ। फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने हाथों को बांधा और क्या किया, उन्होंने सोचा मैंने अपराध कर दिया है, और वो अपने हाथों को बांधकर किसके पास गए, अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है, ऐसी सेवा वृंदावन में आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए मानसिक सेवा में जो सबसे अधिक कुशल थे, एक्सपर्ट थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर थे। तो जीव गोस्वामी ने जब ये सुना तो जीव गोस्वामी ने उनको ये उपाधि दी, नया उपाधि दिया, क्या ठाकुर महाशय। वास्तव में आपके समान राधा रानी की सेवा करने का सामर्थ्य किसी और में नहीं है, मानसिक सेवा के आप धुरंधर आचार्य हो। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी ये सेवा करते हैं, और वो इतने बड़े भक्त होकर भी वो सोचते हैं कि मुझे ये जो नवदा भक्ति है वो कैसे करनी है, बहुत गंभीरता से। उनको कोई आवश्यकता नहीं है नवदा भक्ति करने की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे बहुत गंभीरता से और अच्छी तरह से ये नवदा भक्ति की प्रैक्टिस करनी है। तो ये नवदा भक्ति वास्तव में क्या है, नवदा भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। तो भागवतम का मर्म या सार ये जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे गोस्वामीगण, उनके ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। हम महाप्रभु की शिक्षा का सार जानना है तो इन आचार्यों के ग्रंथ हैं। तो श्रीमद् भागवतम का मर्म या सार है नवदा भक्ति। तो जब प्रहलाद महाराज स्कूल गए थे, और प्रहलाद महाराज जब उनके जो पिता हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के वापस आया है कुछ महीनों के बाद, तो हिरण्यकश्यपु ने उनको गोद में बिठाया और एक प्रश्न पूछा। हिरण्यकश्यपु ने क्या पूछा, हिरण्यकश्यपु उवाच, हिरण्यकश्यपु ने बोला, प्रह्लादं च तां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम् काले नैतावतायुष्मान् अन्य शिक्षक गुरुर् भवान्। उन्होंने कहा प्रह्लाद अन्य उच्चतां तात, हे मेरे बेटे प्रह्लाद तुम बोलो जरा, क्या बोलो, स्वधीतं आपने जो अच्छी तरह से सीखा है, और उत्तम चीज जो स्कूल में सीखी है, सबसे अच्छी चीज जो सीखी है इतने लंबे समय में, हे मेरे चिरंजीव वो मुझे क्या करो, मुझे बताओ। तो प्रहलाद तो तैयार हो गए, क्योंकि अच्छी चीज वो रोज स्कूल में क्लास अपने बॉय क्या कहते हैं क्लास के जो फ्रेंड्स थे उनके साथ बोला करते थे। प्रहलाद ऐसे बालक थे जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी लंच ब्रेक, तुरंत एक बड़े ऐसे स्थान में बैठ जाते थे और बच्चों को कहते थे बैठो मैं अभी कृष्ण कथा सुनाऊंगा वो, और पहली बात बोलते थे कि क्यों है आसुरों के बच्चों, क्यों अपना समय व्यस्त कर रहे हो, हाँ आप क्या करो कृष्ण की सेवा में लगो। तो इनको तो पता था कि क्या सबसे अच्छी चीज है, जैसे पूछा तो प्रहलाद ने दो श्लोक बोले, क्या दो श्लोक थे, प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति च नव लक्षणा क्रियेत भगवत्यथा तन्मन्ये अधितुत्तमम्। उन्होंने कहा हे मेरे पिता मैंने सबसे अच्छी चीज को सीखी है तो ये नौ प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति करना सीखी है। इति पुंसार्पिता विष्णु, जो व्यक्ति इन नौ में से किसी एक को भी गंभीरता से पकड़ लेता है और क्या करता है भगवान के प्रति उसको अर्पित करता है तो उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो सकता है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो नौ चीजें हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए, नौ चीजों को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। सेवन नहीं, उन्होंने सुसेवन ये शब्द यूज करते हैं। और जब कोई व्यक्ति नौ चीजों को अच्छी तरह से करता है तो उसका चित्त जो भौतिक वासना से मलिन हो गया है वो शुद्ध हो जाता है और उस चित्त में कृष्ण के लिए प्रीति जागृत हो जाती है। तो इसका निपुणता से कुशलता के साथ सुसेवा मतलब अच्छी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक भक्त जब भक्ति में आता है और ये चीजें उसको पता भी चलती है लेकिन उसको वो अच्छी तरह से नहीं करता और फिर सोचते अरे इतने साल हो गए कुछ परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन क्यों नहीं मेरा भागवत पढ़ने के लिए कर रहा है, सुनने के लिए कर रहा है, सेवा करने के लिए कर रहा है, हरि नाम का जप करने के लिए कर रहा है, धाम में जाने के लिए कर रहा है, हमारा मन ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। मन फिर से जो जो चीजें हम छोड़ के आए भौतिक कार्य है उन्हीं में लगा रहता है, उसी की ओर भागने लगता है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु इस चीज पर जोर देते हुए हमें सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को ये जो नवदा भक्ति है वो करने का प्रयास करना चाहिए। मैं सोच रहा था ये नौ चीजों को एक्सप्लेन करो लेकिन समय तो नहीं है, लेकिन ट्राई करता हूँ थोड़ा सा श्रवण के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये नौ नौ भक्ति है। नौ क्या है? श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान के बारे में बोलना, स्मरणम भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की सेवा करना, चरणों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की पूजा करना, वंदनम भगवान को प्रणाम करना या उनकी प्रार्थनाएं करना, दासम दास की भावना से उनकी सेवा में लगे रहना, सत्यम मित्रता की भावना से भगवान की सेवा करना, आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदनम पूर्ण रूप से अपना शरीर मन वाणी सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। तो यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि इतने नौ चीजें मैं नहीं कर सकता, किसी एक के पीछे लग जाए हाथ धोके, ऐसे हाथ धोके एक के पीछे लगना, यदि आपने लगता है कि मुझे भगवान चाहिए चाहिए तो एक चीज को पकड़ लो और उसके पीछे हाथ धोके लगो। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ उनको मांगना होता है एक चीज को पकड़ते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं, ले तुम अभी बस हो गए, वैसे ही है। एक चीज को कोई पकड़ता है कृष्ण बाध्य हो जाते हैं उसको अपना प्रेम देने के लिए। इसलिए हर एक चीज का एक एक आचार्य हुआ है। जैसे श्रवणम श्रवणे परीक्षेण, परीक्षित महाराज ने किसी चीज को पकड़ा ही नहीं अपने जीवन में, किसको पकड़ा? श्रवण, दिन रात सुनना है बस, चाहे मुझे पढ़ना लिखना आ रहा है नहीं, कृष्ण कथा को मुझे बस भक्तों के मुख से सुनते रहना है, भागवतम को सुनना है, उससे परफेक्शन सिद्धि। और कीर्तनम किसने किया? शुकदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार से अलग अलग इन सबके जो आचार्य हैं, अलग अलग डिवोटी हैं। तो हमारे लिए बाकी चीजें यदि नहीं हो रही है हमसे अर्चनम वंदनम दाशम सख्यम आत्मनिवेदनम, चैतन्य महाप्रभु कहते दोनों में से एक पकड़ो या दोनों पकड़ो, वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। जो अच्छे से सुनेगा वो अच्छे से भगवान के बारे में बोल पाएगा, इसलिए श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के बारे में अच्छे से गंभीरता से सुनना चाहिए और फिर सही रूप से उसको हमें रिपीट करना चाहिए। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं सबसे सरल और भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम से। तो श्रवणम या भक्ति की शुरुआत प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का नाम श्रवण करता है तो सबसे पहले उसका चित्त शुद्ध होकर ये देह के प्रति शरीर के प्रति जो प्रेम है वो कम होने लगता है और मलिन जो भावना है, मलिन वासनाएं हैं चित्त पर, वो सब खत्म होती है और फिर व्यक्ति कृष्ण को समझने लगता है, कृष्ण उसको रिवील होने लगते, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं उसके हृदय में अपने आप प्रेरित होती है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं तच्च नाम रूप गुण लीला मय शब्दानां श्रोत्र स्पर्श तत्रापि श्रवणे श्री भागवत श्रवणंतु परम श्रेष्ठ तस्य तादृश प्रभावमय शब्दात्मा कृत्वतः परम रसमयत्वाच तत्र पूर्वस्माद् यथा। तो जीव गोस्वामी ने अच्छा कमेंट्री दिया है, वो कहते हैं श्रवणम का मतलब क्या है? तच्च नाम रूप गुण लीला मय शब्दानां, प्रमुख श्रवण है कृष्ण के नाम रोग गुण लीला को सुनना डायरेक्ट कृष्ण के बारे में, श्रोत स्पर्श अपने कानों का स्पर्श हो जाना चाहिए। और तत्रापि इसी में भी श्रेष्ठ क्या है, भगवान का जो नाम और गुण लीला है उसको सुनना और उसमें भागवतम को सुनना सबसे श्रेष्ठ श्रवण है, श्रीमद् भागवतम। और उसमें भी वो कहते हैं श्रवण करना ही है, तो वो कहते हैं कि भक्तों के द्वारा रचे हुए जो प्रबंध हैं उनको श्रवण करना अच्छा है, मंगलजनक है। और वो भी उन भक्तों के द्वारा जो भगवान से अधिक प्रेम रखते हैं, भगवान के प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, ऐसे भक्तों के मुख से सुनने का महात्म्य क्या है और अधिक है। तो फिर क्या कहा जाए, जो भागवतम है उन भक्तों के द्वारा सुनना जिनके हृदय में कोई भौतिक वासना नहीं है, वो जो श्रवण है वो अत्यधिक पावरफुल है। हाँ, तो व्यक्ति को अपने वो कहते हैं उन्नत अवस्था है, तो वो कहते हैं जीव गोस्वामी की सो जाती वाले भक्त से सुनना, मतलब अपने भाव और अपने रस से जो मिला हुआ है ऐसे भक्त के मुख से सुनना वो श्रवण सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसलिए वो श्रवणम के ऊपर जोर देते हैं। और दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन किस चीज का, कीर्तन का मतलब है कीर्तिति इति कीर्तन, भगवान के कीर्ति को बोलते रहना उसको कीर्तन कहा गया है। चार प्रकार के कीर्तन है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। वैसे ये चार श्रवण है, नाम श्रवण, रूप श्रवण, गुण श्रवण और लीला का श्रवण। तो वैसे ये चार कीर्तन, इसमें भी कौन सा श्रेष्ठ कीर्तन है, कलि काले धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग में नाम संकीर्तन कीर्तन करना हरि नाम का यह सर्वश्रेष्ठ है, सारे साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन है। क्योंकि भगवान नाम का कीर्तन या भगवान नाम का जप करने से यह परम श्रेष्ठ साधन है, जिससे केवल कृष्ण प्रेम व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आए वृंदावन से, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा भजने रमद्य हय नव, भजने रमद्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। भजन में श्रेष्ठ भजन क्या है, नव विदा भक्ति। और जो कृष्ण प्रेम दे सकता है इतना शक्ति उसमें है, लेकिन उसमें भी क्या कहते महाप्रभु, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाये प्रेमधन। उसमें भी श्रेष्ठ है कि भगवान के नाम का कीर्तन करना है, जप करना, वो भी अपराधों से रहित होकर। जब व्यक्ति अपराधों से रहित होकर जप करता है तो उसको प्रेम रूपी धन मिलता है। वही बात सार्वम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने कही। सार्वम भट्टाचार्य पहले मायावादी थे, सुबह सुबह मुंह धोया और महाप्रभु से मिलने गए। उन्होंने कहा भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते हैदमन, मैं सुनना चाहता हूं आपके द्वारा भक्ति में, भक्ति प्राप्त करने में श्रेष्ठ साधन क्या है, किस चीज से भक्ति जल्दी प्राप्त की जा सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि नाम जो है, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने कहा ये जो नाम संकीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रेम साध्य हो सकता है। तो कोई कहेगा कि कैसे नाम लेना चाहिए हमें, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बताया जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय तहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन अपने दो भक्तों को बोला कि हरे नाम का जप कैसे करना चाहिए, हे रामानंद राय हे स्वरूप दामोदर, इस प्रकार से जप करने से प्रेम उत्पन्न होगा, अन्यथा प्रेम नाम की चीज हृदय में उत्पन्न नहीं होगी, जप करने से भी काम वासना क्या होगी जागृत हो जाएगी, महाप्रभु कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कैसे क्या भावना होनी चाहिए जप करने वाले व्यक्ति के हृदय में, तो महाप्रभु ने फिर एक श्लोक बोला जो आप रोज बोलते हैं सुबह, कौन सा, तृणादपि सुनिचेन ತರೋಣಿಪಿ ಸಹಿಷ್ಣನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಯ. ಕಿ ಹರಿನಾಮ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಇಸ್ ಭಾವನಾ ಸೆ ತೃಣ ಸೆ ಭಿ ಅಧಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಸಮಝನಾ ಚಾಹಿಯೆ ನೀಚ ಹಾಂ ಸೋ ನೀಚೇನ ಪೇಡ್ ಕೆ ಸಮಾನ ಸಹನಶೀಲ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಹಮೇ ಕೋಈ ಮಾನ ದೇ ಯಾ ನಾ ದೇ ಲೇಕಿನ್ ಹಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಮಾನ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮ್ಮಾನ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಯೇ ಭಾವನಾ ಜಬ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಹೋಗಿ ತಭಿ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಹರಿ ನಾಮ ಹಮಾರೇ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ತಭಿ ಹಮ ನಾಮ ಲೇ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಮಹಾಪ್ರಭು हम बोलते हैं उनको पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ. उत्तम हयापना के माने त्रिनाधाम दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसाम. तो महाप्रभु कहते कैसे जब करना चाहिए वो कहते हैं पहले तो व्यक्ति को उत्तम होते हुए भी अपने आप को एक तिनके से भी निम्न मानना चाहिए, छोटा मानना चाहिए. कॉलर क्यों रखी जाती है पता है आपको शर्ट्स को हा? इसलिए हम कुर्ते में कॉलर नहीं रखते भक्तों के. देखा है कुर्ते में कॉलर कॉलर रहते तो हम कॉलर को टाइट करते हुए चलते दिखाते हैं मैं बॉस हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, है ना, मैं लीडर हूं, कंट्रोलर हूं, मालिक हूं. तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि मैं तिनके से भी छोटा हूं. महाप्रभु कहते हैं व्यक्ति को अपने आप को तिनके से भी छोटा मानना चाहिए. तिनके की घास के तिनके के ऊपर चलते तो कभी बोलते हैं आपको क्यों चल रहे हैं मेरे ऊपर, हमारे हमें कोई स्पर्श करता है थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं. अगर कोई पाव रख दे, प्रभुपाद जैसे भक्त कहते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए उनकी एक जो डिवोटी माता जी थी जदुरानी, उन्होंने पेंटिंग बनाया. प्रभुपाद के रूम में आई, कहा कि मैं ऊपर टांगती हूँ. प्रभुपाद बैठे थे अपने डेस्क में, तो वो प्रभुपाद जहां बैठने का मैट है वो गई टांगी और उसका पाव जहां प्रभुपाद बैठे थे उस मैट के ऊपर पड़ा. तो प्रभुपाद को मुझे क्षमा कीजिए, मेरा पाव आपके मैट के ऊपर पड़ा है. प्रभुपाद ने कहा मेरे चटाई पर क्या, कृष्ण की सेवा करने के लिए तुम अपने पाव मेरे सर पर रख सकती हो. सोचो ऐसी भावना कृष्ण की सेवा के लिए. हमें कोई थोड़ा सा छू लेता है तो हमें ऐसे आग बबूला हो जाते, सहन करने की शक्ति नहीं है. भक्ति में वही लंबा समय गुजार सकता है, भक्ति में वही लंबे दिनों तक रह सकता है जिसके अंदर क्या हो, भक्तों को सहन करने की शक्ति हो. नहीं तो बाहर माया को हम सहन करते ही हैं, बॉस को सहन करते हैं, घर में पत्नी बच्चे रिश्तेदार सबको सहन करते हैं, लेकिन भक्ति में आकर किसको सहन करना है, हमें भक्तों को सहन करना है. लेकिन हम एक दूसरे को सहन करने के लिए तैयार नहीं होते, बहाना ढूंढते हैं सेवा से भागने का. वृक्ष जेनो काटी ले हर किछु ना बुलाए, सुखाई या मेरे कवि करे पानी ना मांगाए. वो कहते पेड़ को काटने से भी वो कभी कुछ कंप्लेन नहीं करता और उसको पानी भी ना दो तो सूख जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं. हाँ, आपको मांग रही है इधर पेड़ पौधे के भी आपको मांगते, प्रभु जी आप रोज मंदिर आते हो थोड़ा घर से पानी भी तो लेके आओ अपने. हाँ, यहाँ आके खुद पानी पीते हो, मुझे पानी नहीं देते, इतने सहनशील है. अब देखो हमें थोड़ा प्रशासन में सोचो 5 एटम सर्व हो रहे हैं, उसमें से सर्व करते करते स्वीट राइस हमारी प्लेट से आगे वाले को देकर भक्त आगे चला जाए तो हमें क्या महसूस होता है आप सोच नहीं सकते. हाँ, तो मतलब यहां वृक्ष कुछ मांग नहीं रहा है, मतलब भक्ति में है थोड़ा सा हमें सहनशील होना होगा क्योंकि इतनी बड़ी वस्तु पाने के लिए ये छोटी छोटी चीजों को हमें अपने मन में लेना नहीं होगा जो कृष्ण की कृपा से मिले. प्रभुपाद कहते हैं मैं तो वृक्ष के नीचे ही सोने के लिए तैयार हूं, कृष्ण मुझे वृक्ष के नीचे सोने के लिए अरेंज करे तो मैं वहां तैयार हूं, कृष्ण मुझे महल में रहने के लिए सोने के लिए अरेंज करे तो वहां तैयार हूं. जैसे हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन गए थे, पंजाब गए थे 2002 या 2003 में, नए भक्तों को लेके जाते थे विंटर में ऐसे ठंड में, तो एक बस में बहुत सारे बुक्स भरे, 4-5 न्यू भक्त और मैं, हम गए और हमारे पास कुछ पता नहीं है कि रात्रि में कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कोई सिलेंडर नहीं, कुछ कुकिंग का सामान नहीं, कोई एड्रेस नहीं, किसी को कुछ जानते नहीं थे. गए तो कभी कभी एक दिन तो हमें पूरे दिन स्नान करने के लिए पानी नहीं मिला. सुबह उठे तो वहां वो पंजाब में कोई नदी बह रही थी कुरुक्षेत्र के आगे, पता नहीं, वहां गए गाड़ी पार्क की, वहां स्नान किया, सारा नेचर का कॉल वगैरह सब उधर ही अटैक किया। एक भी रोड के किनारे एक टूटा हुआ मकान था, वहां रातें गुजारे हम सब ने। और फिर लुधियाना पहुंचे तो वहां के लाइफ मेंबर भक्तों ने इतना स्वागत किया, तो वहां के फाइव स्टार होटल में रूम बुक करके वहां रखा हमें एक दिन के लिए। और फिर वहां से हम बटाला गए, बटाला बहुत दूर था, तो वहां हम किसी को नहीं जानते थे। तो वहां पहुंचे तो ऐसे रास्ते में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मिला, वो कहता मैं आपका लाइफ मेंबर हूँ, आप लोग कहाँ रुके? मैंने कहा हमारे पास रहने के लिए स्थान नहीं है। कहता वो हमारे घर में चले, और उसका राइस मिल था बड़ा, फिर उसने प्रोग्राम रखा, एक स्कूल में प्रोग्राम करवाया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक भक्त को तैयार होना चाहिए कि आज कृष्ण मुझे जैसी मर्जी रहे उसमें मुझे क्या रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद गए जहाज से गए, लेकिन चाहे बाकी संसार में उन्होंने विमान से ट्रेवल किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं, जय जय मांगे तारे दे आपन धन, गर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। वृक्ष से जो भी कुछ मांगता है वो वृक्ष सब कुछ देता है, लेकिन खुद सर्दी गर्मी सहन करता है। उत्तम है या वैष्णव अबे निराभिमान, जिवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम होकर भी भक्त दूसरों को हमेशा मान देता है, ये जानते हुए कि कृष्ण इन जीवों के हृदय में निवास कर रहे हैं। युमत हय जय कृष्ण नाम लाय, कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। बहुत सरल है, यही हैया, इस प्रकार से होकर जो कृष्ण नाम लेता है, भावना हृदय में डालकर कृष्ण रे चरण तार प्रेम उपजय, कृष्ण के चरण में उसका क्या होगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें श्रवण और कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें किसी चीज को अपने जीवन में पकड़ना है तो इन दो चीजों को हम पकड़े। मुझे अच्छे से श्रवण करना है, श्रवण करना एक है भक्तों के द्वारा सुनना, और दूसरा है ग्रंथों को पढ़ना अधिक से अधिक, वो भी क्या है, बेस्ट श्रवण है। प्रभुपाद ने कहा मैं जीवित हूं अपने ग्रंथों में, कोई मुझसे बात करना चाहता है तो कहां मिलूंगा, मैं ग्रंथों में हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप श्रवण कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं हरि नाम का उच्चारण करके, और जिससे भी हम मिलते हैं उसको कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक बोलकर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा कि जो शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगा रहता है उसको कृष्ण की भेंट होना निश्चित है। तो नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध भक्ति क्या है उसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं कि भागवत का आश्रय लेकर नवदा भक्ति करे, उसमें भी श्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन या श्रवण और कीर्तन। और वो कहते अन्य देवाश्रय नहीं, अन्य देवताओं की भजन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण का भजन करो। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, केवल सोचते रहना चाहिए कैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ट्रैफिक में आप फंसते हो तो कभी यहां से रहते हो, हॉर्न बजाते रहते हो, ढूंढते रहते हो, कल हम कहां गए, रैली गए थे तो वह ट्रैफिक में ढूंढ रहे थे कैसे भागना है आगे आगे। तो वैसे ही भक्ति आते हैं, दिन बिताते हैं लेकिन ढीले पड़ जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए रोज कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है जब आप प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते, चाहे समझ में आए। कई लोग मुझे कहते गुरु जी समझ में नहीं आता इसलिए हम नहीं पढ़ते। समझ में आए ना आए पढ़ना है। तो जो कोई व्यक्ति पढ़ने लगता है कृष्ण कहते हैं जानना चाहता है मुझे, भगवान बुद्धि देते फिर समझ में आने लगता है। ऐसे कितने भक्त हैं, एक भक्त है मुंबई में जो एक ब्रह्मचारी 4 क्लास पढ़े हैं, कितने क्लास, लेकिन वो सबसे बड़े प्रचारक है मुंबई के। उन्होंने इतने भक्त बनाए कि 500 से 600 से ज्यादा भक्त बनाए, और अभी उनके पास पूरा वो है, लेकिन पढ़ने का इंग्लिश वगैरह नहीं आता, लेकिन वो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते और गुरु से प्रार्थना करते रहते हैं। और उनको हिंदी में उड़िया भक्त है, उनको पढ़ना नहीं आ रहा था हिंदी भी, 4 क्लास पढ़ा है वो क्या पढ़ेगा, लेकिन उन्होंने शुरू किया और देखा पढ़ने आ रहा है, देखा उनको समझ में आ रहा है, और देखा वो प्रवचन भी करने आ रहा है। अभी इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं और इतने लोगों को भक्त बनाया। अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा
वो अभी मुंबई में एक फिल्म स्टार, एक ओडिया हीरोइन है, वो एक दिन मंदिर आए तो उन्होंने उसको प्रचार कर दिया। वो शूटिंग करने से पहले 16 माला जप करके जाती है। अब सोचो मतलब योग्यता क्या है कि हमारे अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, सेवा करनी है। कृष्ण बुद्धि देते हैं लेकिन हमें अपने हृदय को थोड़ा खोलना होगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद देवी।